एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी। दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं और एक ऐसे इंसान पर जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश की। किताब है ट्रेसी किडर की माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स, द क्वेस्ट ऑफ डॉक्टर पॉल फार्मर, अ मैन हु वुड क्योर द वर्ल्ड। 2003 में आई थी ये।
जी, और किताब के केंद्र में है डॉक्टर पॉल फार्मर।
हाँ, डॉक्टर पॉल फार्मर।
डॉक्टर पॉल एडवर्ड फार्मर 1959 में जन्मे और 2022 में उनका निधन हुआ। वो एक अमेरिकी डॉक्टर तो थे ही, पर सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, मतलब चिकित्सा मानव विज्ञानी, और वैश्विक स्वास्थ्य के आप कह सकते हैं एक जबरदस्त पैरोकार।
बिल्कुल।
उन्होंने पार्टनर्स इन हेल्थ, जिसे हम PIH कहते हैं, उस संगठन की सह स्थापना की थी जिम योंग किम और ओफेलिया डाहल जैसे साथियों के साथ मिलकर, और उनका पूरा जीवन, मतलब पूरी जिंदगी, दुनिया के सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर जो लोग हैं, उन तक अच्छी क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में लगा दी।
और आज के समय में उनकी कहानी सुनना क्यों इतना जरूरी हो जाता है?
देखिए, शायद इसलिए क्योंकि फार्मर का एक अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई विलासिता की चीज नहीं,
सही बात है।
ये एक बुनियादी मानवाधिकार है, सबका हक है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ये साबित करने में कि दुनिया का जो सबसे गरीब इंसान है ना, उसे भी ठीक वैसी ही मेडिकल देखभाल मिलनी चाहिए जैसी किसी अमीर को मिलती है।
ये विचार तो आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
हाँ, खासकर आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि दुनिया में असमानता बढ़ रही है, स्वास्थ्य संकट आ रहे हैं जैसे हमने कोविड में देखा। ऐसे में फार्मा की कहानी एक उम्मीद देती है। वो दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी, अगर उसका इरादा पक्का हो, नैतिक साहस हो, तो वो पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है।
उन्होंने तो कई देशों में काम किया ना,
है ना?
हेती, पेरू।
हाँ, हेती, पेरू, रूस, रवांडा, कई जगह। और उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य के जो पारंपरिक सोच थी ना, खासकर वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली बात,
हाँ, कि गरीबों का इलाज महंगा है तो रहने दो।
बिल्कुल उसी सोच को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि जहां इच्छा हो, वहां मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बेहतरीन नतीजे लाए जा सकते हैं। तो चलिए उनके इस असाधारण सफर को, उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं आज।
जरूर, उनका सफर भी तो काफी अलग था। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसे लोग किसी खास माहौल में पले बड़े होंगे। फार्मर का शुरुआती जीवन कैसा था, कहाँ से आई ये सोच?
हाँ, उनका बचपन जैसा आपने कहा काफी अलग था, पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं था। एक बड़ा कैथोलिक परिवार था। पिता जो थे वो तरह तरह के काम करते रहते थे, कभी सेल्समैन, कभी स्कूल टीचर, कभी कुछ और। तो परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था।
अच्छा।
कभी कभी तो वो लोग एक पुरानी स्कूल बस में रहे, मजाक में उसे ब्लू बर्ड कहते थे, या फ्लोरिडा में एक हाउस बोट पर भी रहे। तो इन अनुभवों से कम उम्र में ही उन्हें दो चीजें समझ आ गई, एक तो ये कि आर्थिक अनिश्चितता क्या होती है, और दूसरी ये कि कम साधनों में भी कैसे जुगाड़ करके रचनात्मक तरीके से काम चलाया जा सकता है, रिसोर्सफुलनेस जिसे कहते हैं।
ये तो दिलचस्प है। मतलब गरीबी और अस्थिरता उन्होंने बचपन में ही देखी, इसका असर पड़ा होगा उनके बाद के काम पर।
हाँ, बिल्कुल पढ़ा। उनकी माँ स्कूल टीचर थीं, उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर बहुत जोर दिया, और पिता से उन्हें वो जज्बा मिला कि मुश्किल हालात में भी टिके रहो, रास्ता निकालो। और परिवार की कैथोलिक आस्था थी, तो गरीबों की सेवा, वंचितों की मदद, ये सब बातें बचपन से ही मन में बैठ गई थीं, एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह।
और वो हैती वाली बात
हाँ
सुना है, बचपन में हैती गए थे?
हाँ बचपन में ही परिवार के साथ हैती गए थे, और वहां उन्होंने पहली बार वो भयानक कॉन्ट्रास्ट देखा, एक तरफ अमीरी और दूसरी तरफ वैसी गरीबी जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। वो जो खाई देखी ना, वो उनके दिमाग में कहीं अटक गई। शायद वो पहला बीज था जिसने उन्हें बाद में उस रास्ते पर डाला।
फिर उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, और ये डॉक्टर बनने के साथ साथ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का विचार कैसे आया? ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है।
हाँ, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी गए। वहां पढ़ते हुए ये जो वैश्विक असमानता है, सामाजिक अन्याय है, ये मुद्दे उन्हें और ज्यादा गहराई से महसूस होने लगे, और वहीं उनका परिचय हुआ रुडोल्फ विर्चो के विचारों से।
रुडोल्फ विर्चो, वो कौन थे?
विर्चो 19वीं सदी के एक जर्मन डॉक्टर थे, पैथोलॉजिस्ट थे, समाज सुधारक भी थे। उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि चिकित्सा एक सामाजिक विज्ञान है और राजनीति बड़े पैमाने पर चिकित्सा के अलावा कुछ नहीं है।
अच्छा,
ये बात फार्मा के लिए जैसे आंखें खुलने वाली थी। उन्हें समझ आया कि बीमारी सिर्फ शरीर में कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ी नहीं है, अक्सर ये गरीबी, नस्लवाद, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, इन सब का नतीजा होती है। मतलब बीमारी के पीछे भी एक सामाजिक कहानी है। यहीं से उनकी सोच को एक नई दिशा मिली।
और फिर आई हेती की वो यात्रा जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसके बारे में काफी बात होती है।
हाँ, वो थी 1983 की यात्रा। हेती के कांगे गांव गए थे वो, एक बहुत ही गरीब गांव। और वहां जो उन्होंने देखा, लोग ऐसी बीमारियों से मर रहे थे जिनका इलाज आसानी से हो सकता था। साफ पानी नहीं था, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, वो सब देखकर वो अंदर तक हिल रहे। उन्हें लगा कि सिर्फ दूर बैठकर अफसोस करना काफी नहीं है, कुछ करना होगा। और यही उन्हें अपने जीवन का, कह सकते हैं, मिशन मिला। और इसी अनुभव के बाद उन्होंने वो असाधारण फैसला किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक साथ दो डिग्रियां करने का।
दो डिग्रियां एक साथ?
हाँ, मेडिसिन में MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दोनों साथ साथ।
कमाल है, ऐसा क्यों?
ताकि वो सिर्फ लोगों की बीमारियों का इलाज ना करें, बल्कि ये भी समझें कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, इनके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या हैं। मतलब इलाज भी करें और जड़ को भी समझें।
तो यहीं से फिर पार्टनर्स इन हेल्थ यानी PIH की शुरुआत हुई, एक सोच जमीन पर उतरने लगी।
बिल्कुल, 1987 में हार्वर्ड में ही उनकी मुलाकात हुई जिम योंग किम से, जो बाद में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बने।
हाँ हाँ, मैंने सुना है।
ओफेलिया डाहल, जो मशहूर लेखक रॉयल्ड डाहल की बेटी हैं, टॉड मकॉमैक, ये सब एक जैसी सोच वाले लोग थे। इन सब ने मिलकर PIH की स्थापना की। और उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? उसी कांगे गांव में, हेती में।
अच्छा, जहाँ वो पहले गए थे?
जी हाँ, वहाँ उन्होंने जैनमी लासांते नाम से क्लिनिक और हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। क्रियोल भाषा में इसका मतलब भी पार्टनर्स इन हेल्थ ही होता है। पर ये सिर्फ एक क्लिनिक नहीं था, ये एक पूरा मॉडल था समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवा का।
इसमें क्या खास था?
इसमें अच्छी क्लिनिकल केयर तो थी ही, साथ में उन्होंने स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर हेल्थ वर्कर बनाया। उन्हें वो कहते थे अकॉम्पैनियाटोर्स, फ्रेंड शब्द है, मतलब साथी या साथ चलने वाले।
अकॉम्पैनियाटोर?
हाँ, अकॉम्पैनियाटोर। ये लोग घर घर जाते थे, मरीजों की देखभाल करते, दवा टाइम पर लिया नहीं ये देखते, जरूरत पड़ती तो खाना या दूसरी सामाजिक मदद भी देते थे। मतलब मरीज को सिर्फ एक केस नहीं समझते थे, उसे एक पूरा इंसान मानते थे, उसकी पूरी परिस्थिति को समझते थे।
ये वाकई बिल्कुल अलग सोच थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबियां क्या रहीं? मतलब ऐसी कौन सी चीजें थी जिनसे न सिर्फ उनके काम को पहचान मिली, बल्कि दुनिया की हेल्थ पॉलिसी पर भी असर पड़ा?
देखिए, कामयाबियां तो कई हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा जानी जाती है और जिसने सचमुच वैश्विक स्वास्थ्य की दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो थी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी MDR-TB के इलाज में सफलता।
MDR-TB? ये टीबी का वो बिगड़ा हुआ रूप है ना?
हाँ बिल्कुल, टीबी का वो प्रकार जिस पर आम दवाएं काम नहीं करती। 1990 के दशक की बात है, पेरू की राजधानी लीमा के पास एक इलाका है कराबायो। वहाँ की झुग्गी बस्तियों में MDR-TB बहुत तेजी से फैल रहा था। उस समय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी बड़ी संस्थाएं क्या मानती थीं? वो कहती थीं कि गरीब देशों में ऐसी बस्तियों में MDR-TB का इलाज करना बहुत महंगा है, बहुत जटिल है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मतलब इस पर पैसा खर्च करना समझदारी नहीं। उनका जोर रोकथाम पर था, इलाज पर नहीं।
अच्छा, तो उन्होंने क्या किया?
फार्मा और PIH ने कहा, ये बात तो सरासर गलत है, नैतिक रूप से गलत है। किसी की जान सिर्फ इसलिए कैसे जा सकती है कि उसका इलाज महंगा है या वो गरीब है? उन्होंने इस सोच को चैलेंज किया, और यही कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है।
कैसे?
उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया और काराबायो में MDR-TB के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया, उन्हीं दवाओं से, उन्हीं प्रोटोकॉल से जो अमेरिका या यूरोप जैसे अमीर देशों में इस्तेमाल होते थे।
और नतीजा?
नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने न सिर्फ मरीजों को ठीक किया बल्कि उनकी जो इलाज की दर थी क्योर रेट वो अमीर देशों के बराबर या उनसे भी बेहतर निकली।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
हाँ, ये एक जबरदस्त उपलब्धि थी। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जिसे नामुमकिन या अव्यवहारिक माना जा रहा था वो असल में संभव है, और सिर्फ संभव नहीं नैतिक रूप से जरूरी भी है। इस सफलता ने WHO और दूसरी संस्थाओं पर दबाव बनाया। उन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। MDR-TB के इलाज को वैश्विक एजेंडे में लाना पड़ा। इसने साबित कर दिया कि गरीबी मौत की सजा नहीं हो सकती।
इसने तो सच में सब कुछ बदल दिया होगा।
बिल्कुल। इसके बाद PIH का काम बहुत तेजी से फैला। पेरू के बाद रूस की जेलों में MDR-TB का इलाज शुरू हुआ। रवांडा में जहां 1994 में भयानक नरसंहार हुआ था, वहां की तबाह हो चुकी हेल्थ सिस्टम को दोबारा खड़ा करने में उन्होंने सरकार के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया।
रवांडा में भी?
हाँ। फिर लेसोथो, मलावी, मेक्सिको, अमेरिका में नवाजो नेशन, कई जगहों पर PIH ने अपने मॉडल को कामयाबी से लागू किया। फार्मा खुद हार्वर्ड में प्रोफेसर बने, कई इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार रहे, UN के विशेष दूत भी बने।
और फिर 2003 में जब ट्रेसी किडर की ये किताब आई, माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स, इसने पॉल फार्मर और PIH के काम को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया।
और ये सच है कि उनका अंत भी काम करते हुए ही हुआ। हाँ, ये बात दिल को छू जाती है। फरवरी 2022 में सिर्फ 62 साल की उम्र में उनका निधन रवांडा में हुआ, वहीं जहां वो PIH के बनाए बुटाबो अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ इक्विटी में पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे। उन्होंने वाकई अपनी आखिरी सांस तक वही किया जिसमें उनका यकीन था, सेवा, समानता और न्याय के लिए संघर्ष।
ये जो इतना अथक काम था, एक जुनून सा था, इसके पीछे डॉक्टर फार्मा का मूल दर्शन क्या था? मतलब कौन सी गहरी सोच थी जो उन्हें चलाती थी?
देखिए, उनके दर्शन का जो केंद्र था वो एक बहुत सीधा लेकिन क्रांतिकारी विचार था। स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट। ये कोई चीज नहीं है जिसे बाजार में बेचा खरीदा जाए या जिसकी कीमत इस बात से तय हो कि मरीज कितना पैसा दे सकता है। वो तो पैसे का हिसाब किताब पहला फैक्टर नहीं हो सकता। ये सोचना ही कि कुछ लोगों की जिंदगी दूसरों से कम कीमती है क्योंकि वो गरीब है, ये उन्हें नैतिक रूप से बहुत चुभता था।
उन्होंने स्ट्रक्चरल वायलेंस की भी बात की, संरचनात्मक हिंसा। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, क्या मतलब था इसका उनके लिए?
हाँ, ये उनके विश्लेषण का, उनकी सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और ये उनकी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी वाली समझ से आता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब है कि समाज के ढांचे में ही, उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से लगातार कुछ खास ग्रुप्स को, जैसे गरीबों को या किसी खास नस्ल के लोगों को या महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें मौकों से दूर रखती हैं, उन्हें बीमारियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाती हैं।
मतलब ये सीधा हमला नहीं है, पर व्यवस्था ही नुकसान पहुंचा रही है।
बिल्कुल। ये कोई गोली या तलवार का वार नहीं है, ये सिस्टम का, व्यवस्था का वायलेंस है। अदृश्य है पर असर बहुत गहरा है। फार्मर मानते थे कि डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी के लक्षण ठीक करना नहीं है, बल्कि इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को पहचानना और इसके खिलाफ लड़ना भी है। ये मेडिसिन को सोशल जस्टिस की लड़ाई से जोड़ देता है।
ये तो हुई प्रॉब्लम की जड़ की बात, लेकिन जमीन पर असल में उनका तरीका क्या था, काम कैसे करते थे वो?
उनका तरीका था जिसे वो कहते थे प्रैग्मैटिक सॉलिडैरिटी, यानी व्यवहारिक एकजुटता, या फिर वो शब्द जो वो अक्सर इस्तेमाल करते थे, अकम्पनीमेंट।
अकम्पनीमेंट, साथ चलना।
हाँ, साथ चलना। इसका मतलब था कि आप बाहर से आकर हीरो की तरह समाधान नहीं थोपते, आप समुदाय के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सिर्फ उनकी बीमारी नहीं देखते, आप उनकी पूरी जिंदगी देखते हैं, उनकी गरीबी, खाने की कमी, रहने की जगह, सामाजिक सपोर्ट, सब कुछ।
और वो अकम्पनाटोर वाला मॉडल इसी सोच से निकला था?
जी हाँ, बिल्कुल। वो अकम्पैनेटर स्थानीय लोग थे जो मरीजों के साथ सचमुच चलते थे, उनकी रोज की मुश्किलों में साथ देते थे। एक और बात जो वो कहते थे वो थी हर्मन्यूटिक ऑफ जेनरोसिटी, मतलब लोगों को, खासकर मरीजों को, शक की नज़र से मत देखो, उदारता से, सहानुभूति से समझने की कोशिश करो, उन्हें उनकी हालत के लिए दोष मत दो, उनकी परिस्थितियों को समझो।
और उन्हें खूब इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, इतना जज्बा, इतनी एनर्जी?
कई चीजें थीं। एक तो उनका गहरा नैतिक विश्वास, कैथोलिक परवरिश से जो सेवा की भावना मिली थी वो। दूसरा, अन्याय के खिलाफ एक बहुत तेज गुस्सा। कभी कभी तो वो फट पड़ते थे। वो मजाक में से कहते थे होली इम्पेशंस, पवित्र अधीरता।
होली इम्पेशंस?
हाँ, उन्हें लगता था कि दुनिया में इतनी तकलीफ है, इतनी नाइंसाफी है, ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और इसे खत्म करने में देरी करना भी अन्याय है। इसके अलावा उनमें एक जिद भी थी, ये साबित करने की जिद कि जो दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता वो गलत है। वो दिखाना चाहते थे कि गरीबों को भी बेस्ट इलाज मिल सकता है, मुश्किल जगहों पर भी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर दी जा सकती है। ये उनके लिए सिर्फ एक मेडिकल चैलेंज नहीं था, एक नैतिक और बौद्धिक चैलेंज भी था।
जाहिर है रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, इतनी बाधाएं आई होंगी, निराशा भी हुई होगी, फंड्स की कमी, कैसे सामना करते थे वो इन सब का?
देखिए, उनका रवैया था अटूट दृढ़ता का, गजब की क्रिएटिविटी थी उनमें, और हार तो वो मानते ही नहीं थे। हैती की वो कहावत है ना, जो किताब का टाइटल भी है, दिरिये मौन जैन मौन, मतलब पहाड़ों के पीछे और पहाड़ हैं।
हाँ,
उन्हें पता था कि एक मुश्किल हल करेंगे तो दूसरी आएगी, एक पहाड़ चढ़ेंगे तो अगला दिखेगा, पर वो रुकते नहीं थे। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बड़ी समस्याओं को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो, स्थानीय लोगों के साथ, सरकारों के साथ मजबूत रिश्ते बनाओ, भरोसा जीतो, और फिर जरूरत के हिसाब से संसाधन जुटाने के लिए पूरी दुनिया में जाओ, लोगों को इंस्पायर करो, फंड्स लाओ। वो निराशा को कभी एक ऑप्शन मानते ही नहीं थे।
अगर हम उनके पूरे जीवन को देखें तो क्या आप ऐसे तीन खास मोड़ बता सकते हैं जिन्होंने सच में सब कुछ बदल दिया, उनके रास्ते को एक नई निर्णायक दिशा दी?
हाँ, सोचा जाए तो कई अहम पड़ाव थे, लेकिन अगर तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों तो मेरे ख्याल से वो ये होंगे। पहला, निश्चित रूप से 1983 में हेती की उनकी पहली यात्रा, खासकर कांगे गांव का वो अनुभव।
हाँ, वो तो शुरुआत थी।
बिल्कुल, वो चिंगारी थी जिसने आग जलाई। वहां की गरीबी, बीमारी, लाचारी को अपनी आंखों से देखना, महसूस करना, इसने एक होनहार स्टूडेंट को एक कमिटेड, जिंदगी भर के लिए समर्पित कार्यकर्ता बना दिया। ये वो पल था जब उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिला। इसने उनकी पढ़ाई लिखाई को एक गहरे नैतिक मिशन से जोड़ दिया।
ये तो पहला मोड़ हुआ। दूसरा?
दूसरा अहम मोड़ था 1987 में पार्टनर्स इन हेल्थ, PIH की स्थापना। ये बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि इसने फार्मर के जो पर्सनल विचार थे, जो उनका जुनून था, उसे एक संस्था का रूप दिया, एक स्थायी ढांचा दिया। PIH सिर्फ एक क्लिनिक नहीं रह गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो उनके विचारों को आगे ले जा सकता था, फंड्स जमा कर सकता था, नए लोगों को ट्रेनिंग दे सकता था, उनके काम को दुनिया भर में फैला सकता था। जिम केम, ओफेलिया डाहल जैसे बेहतरीन साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो उनके बाद भी उनके मिशन को जिंदा रख सकती है। इसने उनके अकेले के प्रयास को एक सामूहिक आंदोलन बना दिया।
और तीसरा, जिसने शायद दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला।
तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा असरदार मोड़, वो था 1990s के दशक में पेरू में MDR-TB पर मिली जीत। ये सिर्फ एक मेडिकल जीत नहीं थी, ये एक वैचारिक जीत थी, एक भूचाल था। उस समय की जो स्थापित ग्लोबल हेल्थ व्यवस्था थी, जिसमें WHO जैसी बड़ी संस्थाएं थीं, वो कह रही थीं कि ये मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। फार्मर और PIH ने ना सिर्फ इसे मुमकिन कर दिखाया, बल्कि ये भी साबित किया कि ये नैतिक रूप से जरूरी है। इस एक सफलता ने दुनिया भर में MDR-TB के इलाज की पॉलिसीज को बदलने पर मजबूर कर दिया। इसने PIH को ग्लोबल स्टेज पर एक गंभीर, भरोसेमंद और असरदार आवाज बना दिया, और इसने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया सबके सामने। क्या हम वाकई ये मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी बराबर कीमती है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो? ये वो पल था जब फार्मा के विचारों ने सीधे सीधे ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी को चुनौती दी और उसे बदलने में कामयाबी हासिल की।
फार्मर का जीवन वाकई असाधारण था, लेकिन उनके सफर से, उनके संघर्षों से, उनकी कामयाबियों से हम जैसे लोग क्या सीख सकते हैं? आज के समय में उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है?
मुझे लगता है सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख ये है कि अगर आपका नैतिक विश्वास मजबूत है, अगर आपकी जीवन का उद्देश्य साफ है, तो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। फार्मा की जिंदगी ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून, उसका नैतिक गुस्सा पूरी व्यवस्था को हिला सकता है, उसे बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब में वो ताकत है अगर हम अपने मूल्यों पर टिके रहें।
और उनके काम करने के तरीके से क्या सीख मिलती है?
एक तो ये कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उत्कृष्टता मतलब एक्सेलेंस संभव है। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। उनका मानना था कि गरीबों को भी सबसे अच्छा मिलना चाहिए। दूसरी बात, उनका काम ये दिखाता है कि बाहर से कोई भी मदद तभी कामयाब होती है जब आप वहाँ की जमीनी हकीकत, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं।
यही उनकी एंथ्रोपोलॉजी की समझ काम आई होगी।
बिल्कुल, वो सिर्फ दवाएं नहीं दे रहे थे, वो लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनकी मुश्किलें सबको समझने की कोशिश कर रहे थे। यही था अकम्पनीमेंट का असली मतलब।
अक्सर ऐसे लोगों को अकेले हीरो की तरह देखा जाता है, क्या ये सही है? टीम वर्क या सहयोग की क्या भूमिका थी?
ये बहुत जरूरी बात उठाई आपने, किताब भी ये साफ करती है। हालांकि फार्मर मुख्य चेहरा थे, करिश्माई थे, लेकिन उनकी सफलता अकेले उनकी नहीं थी। जिम किम, ओफेलिया डाहल जैसे कमाल के साथी, दुनिया भर से डोनर्स और सपोर्टर्स, और सबसे बढ़कर हैती, पेरू, रवांडा जैसी जगहों के हजारों स्थानीय हेल्थ वर्कर, वो अकम्पेनेटर, डॉक्टर, नर्स, इन सबके बिना पीआईएच का काम हो ही नहीं सकता था। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा मिलकर ही होते हैं, सच्ची पार्टनरशिप ही सब कुछ है।
किताब उनके जीवन के तनावों के बारे में भी बात करती है।
हाँ, किडर ने इसे छुपाया नहीं है। फार्मर का जो जुनून था अपने काम के लिए और वो लगातार जो घूमते रहते थे दुनिया भर में, उसका असर उनके निजी जीवन पर, उनके परिवार पर, यहाँ तक कि उनके अपने स्वास्थ्य पर भी पड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े मिशन को जीने की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। आदर्श और यथार्थ के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है।
और आखिर में आज के संदर्भ में अगर देखें, ये बढ़ती हुई असमानता, स्वास्थ्य संकट, इतने सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, इस दौर में फार्मर की विरासत क्यों मायने रखती है?
आज तो उनकी विरासत शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। उनका वो स्ट्रक्चरल वायलेंस का आइडिया हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ बीमारियां कुछ खास समुदायों को ज्यादा सताती हैं, क्यों हेल्थ के नतीजे इतने अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है।
कोविड ने भी ये दिखाया है ना?
बिल्कुल, कोविड महामारी ने दिखाया कि कैसे पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और कैसे सबसे कमजोर कड़ी पूरे सिस्टम को नीचे खींच सकती है। ऐसे समय में जब चारों तरफ निराशा दिख सकती है, सिनिसिज्म हावी हो सकता है, फार्मा की जिंदगी उम्मीद, करुणा और एक्शन का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है।
तो इस पूरी बातचीत से, जो इतनी गहरी और प्रेरणा देने वाली रही, अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक स्तर पर, एक बौद्धिक स्तर पर और एक व्यवहारिक सार्वभौमिक सबक, तो वो क्या होंगे?
तीन मुख्य बातें, ठीक है। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सच्ची खुशी और जिंदगी का मतलब अक्सर बाहरी कामयाबी या आराम में नहीं मिलता, वो मिलता है अपने अंदर के नैतिक विश्वास और अपने कामों के बीच तालमेल बिठाने में। दूसरों के दुख के लिए गहरी हमदर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ जो नैतिक गुस्सा था फार्मा में, वही उनकी कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स था। ये दिखाता है कि करुणा और न्याय की पुकार कितनी ताकतवर हो सकती है।
और दूसरी, बौद्धिक स्तर पर सबसे अहम बात,
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। दुनिया की जो बड़ी उलझी हुई समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य और गरीबी जैसी, उन्हें समझने और सुलझाने के लिए सिर्फ एक नजरिए से देखना काफी नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी सोच मतलब अलग अलग विषयों को मिलाकर सोचना, जैसे फार्मर ने मेडिसिन को एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास, सामाजिक न्याय से जोड़ा, ये कितना जरूरी और कितना शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि बीमारी सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है, वो समाज के ढांचे की भी कहानी है, जिसे उन्होंने स्ट्रक्चरल वायलेंस कहा। प्रॉब्लम्स को उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखना जरूरी है।
और आखिरी, एक ऐसा सबक जो हम सब अपनी जिंदगी में उतार सके,
तीसरा एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। अगर आपके नैतिक सिद्धांत साफ हैं, आपकी लगन अटूट है और आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो एक अकेला इंसान भी वो कर सकता है जो नामुमकिन लगता है। वो दुनिया में असली सार्थक बदलाव ला सकता है। जैसा कि हेती की वो कहावत याद दिलाती है, पहाड़ों के पीछे और पहाड़ हैं। चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम चढ़ाई जारी रखें तो प्रगति हमेशा संभव है। और सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बात जिसे फार्मर ने बार बार कहा, स्वास्थ्य सेवा हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो। इस एक विचार को अगर हम सचमुच मान लें तो शायद दुनिया बदल सकती है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, फार्मर का जीवन हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में मानते हैं कि हर जिंदगी बराबर है? और अगर जवाब हाँ है, तो इस विश्वास का हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे चुनावों में, हमारे कामों में क्या मतलब है? शायद यही सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।